हेलो नमस्ते, मैं हूँ प्राप्ति और आप देख रहे हैं पीपल ऑफ अरबा। और 25 की कम उम्र में इन्होंने इतना सब कुछ अचीव किया है, आइए जानते हैं
उन्हीं से। माय नेम इज परलेश, तो मेरे बच्चे लोग इसे देखते हैं बिकॉज मैं आज भी अपने आप को अधूरी ही समझती हूँ के साथ होता है और मेरे साथ भी हुआ था। पापा ने कहा कि नहीं कर पाएगी, लक्की छोटी है, सोना ही मेरा काम है, मुझे कोई कुछ नहीं बोलता। यार मुझे डोरेमोन दे दो यार।
छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया,
आप सबके दिल में रहूं।
हाय हेलो नमस्ते, मैं हूँ प्राप्ति और आप देख रहे हैं पीपल ऑफ अरपा। अरपा रेडियो का ये इनिशिएटिव वुमेन को एम्पावर करने के लिए है और वुमेन्स डे सेलिब्रेट करने के लिए है। तो आज जो हम वुमनिया से मिलने वाले हैं वो हैं परलेश जायसवाल, जो कि मल्टी पैजेंट विनर हैं और साथ ही साथ बहुत ही छोटे उम्र से ये फैशन की फील्ड से जुड़ी हुई हैं, प्लस ये एक लॉयर भी हैं। और 25 की कम उम्र में इन्होंने इतना सब कुछ अचीव किया है, आइए जानते हैं उन्हीं से। हाय परलेश।
हाय प्राप्ति मैम,
वेलकम टू आवर शो एंड वी वुड लव टू नो अबाउट यू, सो आप अपने बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताइए।
थैंक्स फॉर कॉलिंग मी हियर मैम एंड हेलो एवरीवन। सो माय नेम इज परलेश। मेरा ये जो जर्नी था वो स्टार्टिंग से, यू कैन से सिंस चाइल्डहुड आई एम जस्ट डूइंग दिस। एट द एज ऑफ 8 आई जस्ट स्टार्टेड दिस जर्नी एंड वो स्टार्ट हुआ एक डांस से, बिकॉज आई वॉज गुड इन डांस दैट टाइम। सो माई पेरेंट्स, उन्होंने मुझे अकेडमी ज्वाइन किया, तो देयर वॉज वन सर, ही टोल्ड मी कि आप करो मॉडलिंग ज्वाइन करो। सो ही ग्रूम्ड मी वेल, सो देयर आई जस्ट स्टार्टेड डूइंग एंड वहाँ से मुझे स्टेज फियर टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ क्राउड, ये सारी चीज़ें मैंने सीखी। आई हैव टू जस्ट रिप्रेजेंट माई आउटफिट, माई एथनिक एंड एज वेल एज माई वेस्टर्न वियर टू। सो वहाँ से मेरा स्टार्टअप था एंड मैंने वो चीज़ किया। 2006 में मैंने फर्स्ट टाइटल जीता था, उसका टाइटल अभी भी पेपर पे आया था, अभी भी मैंने इसे कट करके रखा है, मिस कॉन्फिडेंस 2006 एंड बेस्ट डांसर।
ओह दैट्स ग्रेट। सो परलेश, आप अभी फिलहाल अपनी लाइफ में क्या कर रही हैं उसके बारे में हमें थोड़ा बताएं।
यस श्योर। अभी मेरे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, लाइक मैं लॉ स्टूडेंट हूँ, थी और रहूँगी भी, क्योंकि मैं आगे भी और बढ़ते जा रही हूँ। मैं अभी सिविल जज की प्रिपरेशन कर रही हूँ, बट अभी मेरा प्रैक्टिस चल रहा है एज अ लॉयर। मैं हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केसेस अभी देखती हूँ और साथ ही साथ जो मेरा पैशन है, जो मैं साथ लेकर चल रही हूँ, वो है ब्रांड प्रमोशन, फैशन इन्फ्लुएंसर एंड लिटिल बिट आई एम जस्ट डूइंग जजमेंट्स एंड आई एम जस्ट गोइंग फॉर फैशन शोज लाइक फैशन स्टनर, लाइक दिस काइंड ऑफ थिंग, आई एम जस्ट डूइंग दैट। सो ये सारी चीज़ें मेरी चल रही है। सो टाइम मैनेजमेंट करके मैं दोनों चीज़ों को आगे लेकर चल रही हूँ।
परलेश, आप एक इन्फ्लुएंसर हैं बिलासपुर की, रायपुर की, तो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगी एज अ इन्फ्लुएंसर व्हाट यू डू इन सोशल मीडिया।
एज अ इन्फ्लुएंसर आई एम जस्ट प्रमोटिंग थिंग्स, जो चीज़ें हमारे सराउंडिंग्स में चल रही है, विच आर कमिंग न्यूली लॉन्च थिंग्स लाइक ब्रांड्स हो गए, लाइक मॉल्स हो गए, सम गेमिंग जोन्स एंड फैशन इंडस्ट्री, लाइक इट कैन बी ब्यूटी मेकअप एनीथिंग, लाइक आई एम जस्ट डूइंग दैट। एंड मैं
आप सारी फील्ड्स का प्रमोशन कर रहे हो?
राइट।
ओके ओके। इस फील्ड में आपका कैसे इंटरेस्ट डेवलप हुआ, फैशन में जाना है प्लस मुझे लॉयर की भी पढ़ाई करनी, ये दोनों एकदम डिफरेंट कॉम्बिनेशन है, तो हाउ इट वेंट?
Basically, I'm a single daughter of my parents. I don't have brother and sister, first of all. So, when I was child, my father taught me ki tumko boy ka bhi role play karna hai. You have to play a role of a boy. So, you should be self-dependent and financially strong. And unko bahut hi zyada expectations tha mujhse. So, I just started doing hard work. Doing work like a machine that time, all the things like a sequence wise, मैंने सब चीज़ों को divide कर दिया था time management करके। मैं बहुत ज़्यादा पढ़ती थी and अपने passion को भी ध्यान देती थी, मेरा time management जो scene था वो सब चीज़ें मैंने maintain किया। so फिर धीरे से मुझे like merit list में भी मेरा नाम आने लगा, मेरे university से मुझे मिल चुका है, अटल बिहारी वाजपेयी university से मैं top कर चुकी हूँ, vice chancellor द्वारा मुझे सम्मानित किया गया, तो वो मेरी अच्छी अचीवमेंट थी और वो हार्डवर्क का नतीजा था। और साथ ही साथ मैं अपना, मेरा जो पैशन है उसे भी मैं कंटिन्यू लेकर चली।
ओके मतलब आपको ऐसी कोई प्रिविलेज नहीं मिली जो सिंगल चाइल्ड को मिलती है कि भैया सिंगल चाइल्ड है जो मांग रहा है मिल जाए विदाउट एनी हार्ड वर्क बिकॉज हमारे पास एक ही बच्चा ऐसे कोई प्रिविलेजेस आपको नहीं मिली
ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने ये सबका यही रिएक्शन होता है कि आप सिंगल चाइल्ड हो तुझे जो भी चाहिए हम देते हैं ये वाला सिचुएशन होता है बट कभी कभार आप ऐसे फेजेस होते हैं जहाँ पे आप अकेला भी फील करते हो सो मेरे पेरेंट्स के बीच ये था कि हमारे बीच ट्रांसपेरेंसी थी ठीक है वो ट्रस्ट लेवल था वो मुझे देखे कि हाउ पैशनेटेड सी सो एम्बिशियस फॉर हर पैशन दे आर जस्ट सीइंग वॉचिंग द टाइम मैनेजमेंट द फोकस एवरीथिंग दे आर जस्ट वॉचिंग सो इससे जो होता है ट्रस्ट बिल्ड होता है तो दे स्टार्टेड डूइंग सपोर्ट हर चीज़ में वो सपोर्ट करते गए है ना तो लाइक ये चीज़ें होते गई और वो रिजल्ट्स भी देख रहे थे तो मैं आगे बढ़ते गई इस वजह से तो सपोर्ट भी मिलते गया प्यार तो मिला ही अकेले थी बट हाँ जो ट्रस्ट है वो पाना मुश्किल था बट वो चीज़ें जब करते रहते हैं हम तो दिखती जाती है तो वो सारी चीज़ें दिखती गई टाइम के अकॉर्डिंग
परलिश मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि एज एन इन्फ्लुएंसर आपको आपकी क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज लगती हैं
ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ही मैटर करता है फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज इन्फ्लुएंसर से ही लोग देखते हैं सीखते हैं चीज़ें जानते हैं तो इट्स अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमें हर चीज़ का करेक्ट रिव्यूज़ देना चाहिए बिकॉज वो जो ट्रस्ट लेवल जो हम बनाकर चले अपने सोशल मीडिया पे पर्सनल लाइफ पे या जहाँ भी हम कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे हम रिप्रेजेंट करते हैं सारी चीज़ों को तो वो जो ट्रस्ट हम बनाए हैं तो वो चीज़ें लाइक रियल हो ट्रू हो जेन्युइन हो तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं मानती हूँ आप ट्रू रहिए अगर आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही तो आप मत करिए कोई बात नहीं इट्स कम्प्लीटली फाइन अगर किसी कोई चीज अच्छी नहीं लगी तो आप उनको सजेस्ट कर दीजिए भले आप उनको प्रमोट नहीं करिए
राइट और जैसे आपके 1,03,000 फॉलोअर्स है इतने सारे फॉलोअर्स में आप क्या फील करती है आपके लिए जैसे पॉजिटिव लव भी है आपके फैंस भी है बट क्या आपको हेट्रेड और क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा है
हाँ बिल्कुल अगर आपके फैन फॉलोइंग है ठीक है तो अगर कुछ लोग पॉजिटिव हैं तो कुछ नेगेटिव्स भी होती हैं क्योंकि हम सब अलग हैं हमारी वाइब्स अलग है हमारे सबका सोचने का तरीका अलग है कोई लोग मॉडर्न हैं कोई लोग उस चीज़ को फॉलो नहीं करते कोई लोग एकदम ही ज़्यादा नैरो भी सोचने वाले लोग हैं तो वहाँ पे कोई चीज़ें हैं नेगेटिविटी दिखाते हैं कई लोग फ़न के लिए भी लाइक कमेंट कर देते हैं ये इसने क्या पहना है या फिर ये इसने कैसे मेकअप लगाया है लाइक इसे तो बस यही करता है लाइक ये सब चीज़ें होते रहती है पर उसको कोई सीरियस नहीं लेना चाहिए लाइक अगर सच में लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है तो आप उसमें सुधार लाते हैं पर अगर लोग इंजॉय करते हैं बेसिकली मुझे नहीं लगता कि उन चीज़ों को सीरियस लेना चाहिए क्योंकि हम सोशल मीडिया में वही चीज़ डालते हैं जो हमें अच्छा लगे और हम जो दिखाना चाहें सो ये इसमें कोई बड़ी बात नहीं
तो
है
कोई भी नेगेटिव कमेंट आता है तो आप लाइटली लेते हो सीरियसली लेके अपना हेडेक नहीं करती हो
पर एक बार जरूर मैं भी सोचना जरूर पसंद करती हूँ क्योंकि बहुत कोई देख रहे हैं हो सकता है कि मैं भी गलत हो सकती हूँ ना बिल्कुल हो सकती हूँ ये हमारे लिए अच्छी बात है ना कि हर टाइप के लोग हमारे बीच जुड़ रहे हैं तो हर टाइप के सोचने वाले लोग का थॉट्स हमारे तक आ रहे हैं
राइट
है ना तो ये सारी चीजें हैं तो मैं एक बार ये भी सोचना और सजेशन लेना भी जरूरी समझती हूँ कि हाँ जिस वे में मैं चल नहीं हो क्या वो सही है क्योंकि मुझसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं लोग तो
आप पॉजिटिवली लेते हो आपके क्रिटिसिज्म को
अगर नेगेटिव है तो भी मैं उसमें सोचती हूँ अगर वो ठीक है तो मैं बिल्कुल एक्सेप्ट करती हूँ
दैट्स वेरी गुड हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि आज से 5 years बाद परलिश कहाँ है
आप सबके दिल में रहूं
वो तो आप रहोगे साथ में एज अ करियर वाइज अपने आप को आप कहाँ देखना चाहती हैं आज से 5 साल बाद
मैं हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करती हूँ एवरी डे बिकॉज मैं आज भी अपने आप को अधूरी ही समझती हूँ एवरी सिंगल डे मैं हर चीज़ किसी दिन मैं शेफ बन जाती हूँ किसी दिन मैं मेकअप आर्टिस्ट बन जाती हूँ लाइक हर दिन मैं कुछ सीखती हूँ पर चलो मेरा जो फील्ड है वो लॉ है तो मैं चाहती हूँ कि मैं गवर्नमेंट सर्विस की भी ट्राई करूँ और अपना लाइक जो मैं प्राइवेट करी उसमें मैं एक्सपर्ट हो जाऊँ और एज अ इन्फ्लुएंसर मुझे पूरा दुनिया जाने लाइक ये मुझे फेमस और मुझे अच्छे वे में होना है तो ये मैं चाहती हूँ कि अगले 5 साल में ये चीज़ मैं अचीव कर सकूँ
ओके ओके ऑल द बेस्ट फॉर दैट आने वाली जनरेशन को क्या मैसेज देना चाहेंगे लाइक
मैं आने वाली जनरेशन सारे लोगों को मैं यही बोलना चाहूँगी टीनेजर्स को भी यही एडवाइस देना चाहूँगी अपना पैशन कभी मत छोड़ना नेवर नेवर आपका जो भी हॉबीज है, पैशन है, एम है, वो चीज में अड़े रहना. और अगर आपके आपको सिचुएशन भी मिलता है कि आप ये चुनो या वो चुनो, तो आप कोशिश करना कि आप टाइम मैनेजमेंट का हर चीज़ें टाइमली एडजस्ट कर पाओगे, तो आप हो सके तो अपने पैशन को भी साथ ले सको अपने करियर के साथ. क्योंकि हमेशा ये होता है कि आपका करियर के चक्कर में आपका पैशन छूट जाता है. पर अगर लाइफ में पैशन नहीं रहेगा तो आपको टेस्ट कहाँ से मिलेगा, आपको वाइब कहाँ से मिलेगी, वाइब कहाँ से मिलेगी हमें अपने पैशन से. जो वो नहीं रहेगा तो मजा कहाँ से आएगा. तो मेरा यही कहना है कि जो भी मन है सब करो, लाइफ एक बार मिलती है ना, और आगे लेकर चलो और साथ ही साथ अपना करियर बनाओ. दैट्स इट.
आपका जर्नी सुन के तो मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ. पर मैं ये जानना चाहती हूँ आपके फैमिली का इस पूरी जर्नी में कैसा योगदान रहा है, क्योंकि फैशन और लाइफस्टाइल ये सब फील्ड यूजुअली एक मिडिल क्लास फैमिली एक्सेप्ट नहीं करती. आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था जब आपने बोला मुझे इस फील्ड में जाना है? तो
ओके, सो द थिंग इज कि ये आपने जो क्वेश्चन पूछा ये सबके साथ होता है और मेरे साथ भी हुआ था. ये मेरा फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम था जब मैंने जस्ट जंप किया था एलएलबी पे, और मुझे बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था कि एलएलबी का एग्ज़ाम होता कैसा है. और मेरा दो महीने में मेरे एग्ज़ाम्स थे और एक महीने पहले मेरा फैशन शो था. तो मैंने जिद किया घर पे कि मुझे जाना है, उसमें जो आ रही है गेस्ट वो मेरी फेवरेट है, मेरे को उनसे मिलना है. इस तरह से मैंने घर पे जिद किया. मम्मी ने कहा पापा से पूछो. पापा ने कहा देख लो अभी करियर है, एग्जाम है, क्या करना है आगे. मम्मी ने कहा कि ये कर लेगी, मेरे को पता है. पापा ने कहा कि नहीं कर पाएगी, हो ही नहीं सकता, दो महीने में एग्जाम है. फिर मैं रोने लगी, मैं क्या करूं, मना कर दिए दिस ऑल थिंग्स. बट घर में मुझे समझे. मैं रो रही थी रात को, पापा 11 बजे आए, मेरे लिए स्ट्रेटनर कर्लर हर चीज लेकर आए, बोले जा तू ऑडिशन दे और पढ़ाई मेंटेन रखना. तो मैंने ये चीज़ देखा कि ये मेरे हर चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, मुझे समझ रहे हैं. क्योंकि हर चीज़ें जो मेरे और मेरे पेरेंट्स के बीच जो चीज़ें थी वो सारी चीज़ें क्लियर थी, मुझे बहुत अच्छे से समझते थे. एंड इट्स ऑल्सो माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि टू फुलफिल देयर थिंग्स, मतलब जो उनकी जो एक्सपेक्टेशंस थी वो मुझे फुलफिल करनी है, तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी. तो ये चीज़ मेरे माइंड पे था. तो अगर मैं मेरे जो फर्स्ट शो था उसमें मैं बिल्कुल भी मुझे टॉप 10 में ही थी, मैं मुझे कोई अच्छा टाइटल नहीं मिला था, मैं बहुत रोई भी थी, बट मैं पढ़ाई को इतना अच्छा करी थी कि मुझे क्लास में टॉप 5 में मैं मेरा नाम आना स्टार्ट हो गया था. तो वो चीज़ें देख रहे थे कि हाँ ये दोनों चीज़ कर रही है, तो वो ट्रस्ट लेवल बनता गया एंड वो सपोर्ट भी करते गए. फिर ऐसा भी टाइम आने लग गया कि लोग मुझे जानने लग गए थे, जैसे डैड इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, मेरे डैड का इंस्टीट्यूट है, अगर वहाँ मेरा फोटो लगा है तो बोलते हैं हम इसे जानते हैं. तो ऐसा भी सीन आने लग गया कि हाँ हमने इसका वीडियो देखा है, नाम क्या है, हाँ नाम सुना है. तो ऐसी चीज़ें होने लगी तो घर वालों को भी अच्छा लगने लगा और सब तारीफ ही करने लग गए. वाओ, देखते हैं अच्छा लगता है, हम इंस्पायर होते हैं, मेरे बच्चे लोग इसे देखते हैं, उसके साथ ड्रेस चाहिए, तो सजेशंस वगैरह भी आपसे ही लोग लेने आते हैं. तो वहाँ पे आपको पता चलता है कि हाँ आप कहाँ कहाँ पे आपका रोल है. इवन आप कोई इवेंट पे जाओ या फिर आप रोड पे ही निकल जाओ, कई लोग आएंगे कि मैं आपकी वीडियोस देखती हूँ, बहुत इंस्पायर करते हो आप और बहुत अच्छी लगती है. तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको फेम मिल जाता है, फिर अच्छी लगने लगती है, तो आपसे वो चीज़ छूटती नहीं है और वो चीज़ घर वालों को भी अच्छी लगने लगती है. सबको ही समझते हैं जैसा मॉडर्न चीज़ें हैं, हम टाइम के अकॉर्डिंग बढ़ रहे हैं, तो वैसी चीज़ें चल रही, तो सब चीज़ एक्सेप्टेबल धीरे धीरे से होता है, सडन नहीं होता.
तो आइए पर्लिश से जानते हैं कि ये नाम कहाँ से आया, पर्लिश.
ओके, सो बेसिकली ये नाम तो मेरे डैडी ने रखा है, क्योंकि मैं बचपन में हंसती थी तो मेरे जो गाल है ना पर्ल की तरह चमकते, तो सो मेरे डैडी ने ये नाम रखा पर्लिश.
ओके, या ये जो आपने करियर चॉइस किया है इसके पीछे आपका रोल मॉडल कौन है?
डायना मॉल्जेवन फ्रॉम लंडन. उनका भी यही था, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी. उनका ये था कि उनको बहुत लो स्टेज से उन्होंने बहुत ही स्ट्रगल करके विदाउट एनी सपोर्ट, प्लस वो भी अपने फैमिली को लेकर चली और ट्रस्ट बिल्ड किया, और आज वो बहुत बड़ी मॉडल है. सो उनसे मैं ये चीज़ सीखी. उनसे मैंने ये सीखा कि चलो मॉडल्स तो बहुत हैं, बट वो लोगों का दिल जीतती थी, ट्रू थी, जेन्युइन थी, उनके में बिल्कुल ईगो नहीं था, नो एटीट्यूड, वो बहुत सॉफ्ट नेचर की थी और जो भी थी जेन्युइन थी. तो मुझे ये चीज़ अच्छा लगा कि उनके मन में जो भी बातें हैं, जो वो फेस कर रहे हैं या फिर जो उनके रियल लाइफ में चल रहा है, वो बहुत पॉजिटिव वे में लेकर हर चीज़ों को डील करती थी और रिप्रेजेंट करती थी. तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम सीखते हैं, तो वो मुझे अच्छी लगी इनसे, तो मैं उनसे इंस्पायर हुई.
सो आपके इस करियर में आपको कैसे हर्डल्स का सामना करना पड़ा और आपने इसको कैसे ओवरकम किया?
ऐसे प्रॉब्लम्स तो होते ही रहते हैं. लाइक देखा कि अगर मुझे कोई भी, अगर मुझे एक बिजनेस भी स्टार्ट करना है तो विदाउट प्रॉब्लम तो वो सॉल्व होगा नहीं. तो लाइक मेरा भी फील्ड है, तो मैं ही एक ऐसी पर्सन नहीं हूँ जिसके लाइफ में ऐसे सिचुएशंस आ रहे हैं. तो मैंने इस चीज़ को पॉजिटिव वे में लिया और उसे ओवरलोड ना लेकर मैंने उसे, ठीक है अभी है टल जाएगा, मैंने इस वे से उसे ज़्यादा माइंड पर प्रेशर नहीं लेकर उसे सही वे पर लिया. बुरा लगता है तो ऑब्वियसली बुरा लगेगा, ज़्यादा आपको उस वक्त कोई समझाने वाला नहीं होता, आपको समझने वाला नहीं होता है उस चीज़ों को. आप, मैं मोटिवेशनल वीडियोस वगैरह देखती हूँ यूट्यूब पे, हर दिन मैं स्क्रॉल करती हूँ तो मुझे हर दिन कुछ सीखने को मिलता है. तो बहुत कुछ मैं उनसे भी सीखती थी, मैं कुछ ना कुछ सीख ही रही हूँ. तो मैं उससे भी मोटिवेशंस वगैरह लेती थी कि हाँ अच्छे टाइम आने के लिए तुमको ये चीज़ फेस करना होगा. तो लाइक ये चीज़ें माइंड में थी तो होते गया एंड निकलते गए, रास्ते बनते गए लाइक दिस.
मोटिवेशनल वीडियो से आप मोटिवेट हुई,
राइट,
और अपने हर्डल्स को पार कर दिया. पर्लिश के साथ हम खेलने वाले हैं रैपिड फायर राउंड. सो पर्लिश, यू विल हैव अ वेरी लिमिटेड टाइम टू आंसर ऑल दिस क्वेश्चंस. सो पहला क्वेश्चन आपके लिए ये है, अगर आपको अपने काम को एक फिल्म का टाइटल देना पड़े तो वो टाइटल क्या होगा?
लकी.
लकी, ओके, दैट्स ग्रेट. और क्यों?
क्योंकि मेरा निकनेम है.
ओह, दैट्स ग्रेट. आप अपने वर्क प्लेस में अपने बारे में ऐसी कौन सी अजीब अफवाह सुनी है जिससे आपको हंसी आती है?
मुझे हंसी इसलिए आती है क्योंकि मेरी हाइट छोटी है.
तो ये अफवाह क्या सुनी है आपने?
अफवाह ये सुनी है कि वो लाइक वो छोटी है पर वो काम बड़े बड़े करती है लाइक इस.
अच्छा, ये अफवाह से आपको फिर हंसी आती है. ओके,
मैंने कहा हाँ अच्छी बात है.
ऐसा कौन सा बड़ा रिस्क है जो आपने अपने जीवन में उठाया है?
अपने करियर और पैशन को साथ में लेकर जाना एक साथ.
मान के चलिए आप एक इंटरनेशनल स्टेज में हैं और आप छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगी लोगों को?
मैं लोगों को अपना कल्चर रिप्रेजेंट करूंगी. वहाँ जेन्युइनली ये सारी चीज़ें, डाउन टू अर्थ वाला सीन बहुत कम रहता है. हम अपनों को भी उतना ज़्यादा नहीं समझते, बट यहाँ वो चीज़ें दिल से जुड़ती है, ज़मीन से जुड़ती है, जो कि वहाँ नहीं है. तो ये चीज़ मैं उनको दिखाना चाहूँगी क्योंकि वो हम में यूनिकनेस है जो उनमें नहीं है. मेरा कल्चर रहेगा, नेचर रहेगा और टैलेंट तो हमारा है ही.
और ज़रूर से बोल के आइएगा छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया. आप घर का क्या काम ऐसा है जो आपको करने में मजा जाता है?
वैसे तो मैं सोते रहती हूँ और सोना ही मेरा काम है, मुझे कोई कुछ नहीं बोलता.
पर ऐसा कौन सा काम है जो आपको मम्मी ने बोला तो आप खुशी खुशी कर दोगे?
कुकिंग.
कुकिंग, यू लाइक कुकिंग?
यस, आई लाइक कुकिंग.
ओके ओके.
बहुत कम बनाती हूँ बट जब बनाती हूँ शौक से बनाती हूँ, तो कुकिंग.
ओके. अगर आप लॉटरी जीतती हैं तो आप क्या करना चाहेंगे उस पैसे से?
मैं उस पैसे से इन्वेस्ट करना चाहूंगी, ना कि मैं उससे BMW ऑडी लेना चाहूंगी. मैं उस पर इन्वेस्ट करूंगी जिससे वो 10 गुना ज्यादा हो जाएगी. बिकॉज मैं ऑडी लेती हूँ तो उसकी वैल्यू गिरेगी, अगर मैं प्रॉपर्टी लेती हूँ तो 10 साल बाद उसकी वैल्यू इधर होगी. सो दैट्स माय पॉइंट.
कूल. तो पर्लिश, आप मुझे फटाक से बताइए, ऐसी कौन सी सुपर पावर है जो आपको चाहिए?
सुपर पावर लाइक, चलो मैं तो अट्रैक्टिव हूँ, लोगों का बात निकाल लेती हूँ, तो मुझे बोला नहीं चाहिए कि मन में जानने वाली बात कौन क्या सोच रहा है. सुपर पावर यार मुझे डोरेमोन दे दो यार.
अच्छा, तुम्हें डोरेमोन चाहिए? ओके, दैट्स ग्रेट.
डोरेमोन मुझे मिल जाएगा तो उसके पास तो सारे गैजेट्स हैं, तो ऐसे भी मेरा सब काम हो जाएगा. तो ऑल इन वन.
आपकी कोई फेवरेट याद जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहती हैं?
मेमोरीज तो मेरी बचपन की है और वो है, मैं कार्टून लवर हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा कार्टून्स देखती हूँ. और कार्टून्स के साथ साथ हम 90s किड्स हैं, ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स आते थे पहले टीवी पे, डिज्नी पे, बहुत सारी चीज़ों पे आते थे. तो लाइक मैं हैना मोंटाना देखती थी, तो लाइक वहाँ से थोड़ा सा जो चीज़ था कि डबल लाइफ, डबल रोल प्ले करना अपने नॉर्मल से लाइफ में, तो मुझे वो चीज़ पसंद था और मैं चाहती थी कि वो चीज़ मैं अप्लाई करूँ, मैं भी विग लगाऊँ और जाऊँ. लाइक ये मेरा था, बट दैट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग बिकॉज वो एपिसोड था और ये रियल लाइफ है तो वो पॉसिबल नहीं था, बट मैंने कुछ कुछ चीज़ें जो हैं मैंने सीखी है क्योंकि हम बचपन से देख रहे तो चीज़ें अच्छी लगती है. आज के लोगों को भले वो लगे ना लगे, बट हाँ मैं कार्टून्स एंड एपिसोड्स जो मेरे बचपन के जो थे जो मैं देखती थी, तो मैं ऑल टाइम टी वी देखती थी. उस टाइम यूट्यूब नहीं था, यूट्यूब तो स्कूल टाइम में मैं देखती थी, बट जो टी वी से जो मेमोरीज है वो मुझे बहुत इमोशनल कर देती है, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है.
वुमेन्स डे आ चुका है तो आप पर्लिश हमें बताइए कि आप वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में क्या सोचती हैं और महिला सशक्तिकरण के बारे में आप क्या करना चाहती हैं?
देखिए मैं तो चाहती हूँ कि वुमेन्स बहुत आगे तो बढ़ ही रही हैं, पर मैं चाहती हूँ कि वो और बढ़ें. और ये क्वेश्चन कहीं उठे ही नहीं, ये क्वेश्चन जो आपने पूछा ये उठे ही नहीं, बिकॉज अगर हम इक्वल मानते हैं चीज़ों को, बॉयज़ गर्ल्स जेंडर डिफरेंस अगर नहीं करते तो ये क्वेश्चन ही नहीं आना चाहिए ना.
एग्जैक्टली, क्वेश्चन ही आना बंद हो जाना चाहिए.
हाँ, बस तो मैं ये चीज़ करती हूँ. और गर्ल्स को भी लाइक फाइनेंशियली स्ट्रांग होना चाहिए और उनको भी फ्रीडम मिलना चाहिए, है ना. और लाइक उनको भी फुल राइट है कि वो बिजनेस वगैरह हर चीज़ देखें. एंड हमारे पीएम जी इतने सारे स्कीम्स भी निकाले हैं तो उसको भी वो फॉलो करें, क्योंकि उसमें आप अगर ग्रेजुएट हैं, ट्वेल्थ पास हैं, हर किसी में वैरायटीज बटी हुई हैं. तो अगर आपको कहीं से हेल्प नहीं मिल रहा है तो आप स्कीम्स के थ्रू कहीं से भी आप यूट्यूब या फिर आप घर से बिजनेस स्टार्ट करें, शेफ करें, व्हाटएवर आप करें, कहीं से भी करें, आप ज्ञान लें, कहीं से भी इंस्पायर हुए और आगे बढ़ें. तो मैं यही चाहती हूँ. और मैं भी यही, मेरा इंडस्ट्री अलग है पर अगर इससे भी अगर कुछ सीखने को मिल रहा है तो बिल्कुल सीखें.
सही बात है, आज की डेट में फंड्स की कमी इज नॉट अ बहाना टू स्टार्ट अ करियर और स्टार्ट अ बिजनेस, क्योंकि गवर्नमेंट की सही बात है इतनी सारी स्कीम्स है लोगों को पता नहीं रहता. आज इस वीडियो के माध्यम से भी कई लोगों को ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिलेगी कि देर आर स्कीम्स बाई प्रधानमंत्री, योजनाएं हैं बहुत सारी, तो सीएम योजनाएं भी आ गई
हैं,
तो आप उन चीज़ों का फ़ायदा उठा के अपना बिजनेस, अपना लाइन ऑफ करियर स्टार्ट कर सकते हैं. पैसे अब वो बैरियर नहीं रह गए कि मेरे पास पैसे नहीं है, नॉट स्टार्ट अ करियर,
डिपेंडेंट नहीं रहेंगे.
Parlish, as you know that Alpha Radio has called you, so we would like to know आपके विचार कि आप रेडियो सुनती हैं और आपको रेडियो कैसा अलग लगता है from other media entertainments?
जी हाँ, मैं रेडियो सुनती हूँ. ऐसा नहीं है कि मैं रेडियो नहीं सुनती, मैं ज़रूर कार पे जब भी आना जाना करती हूँ तो रेडियो मेरा ऑन रहता है. और सबसे अमेजिंग बात जो ये होती है ना रेडियो पे, जो रैंडम जो सॉन्ग्स बजते हैं ना वो लाइक दिल को छू जाते हैं, क्योंकि पूरा वाइब चेंज कर देता है, एटमॉस्फियर चेंज कर देता है हमारा. क्योंकि हम यूट्यूब पे लाइक स्क्रॉल करके करते हैं, मुझे नहीं मिल रहा, बट जो रैंडम टाइम पे जो सॉन्ग प्ले होता है, ओ माय गॉड, इसको तो मैंने बहुत दिन बाद सुना. ये वाला जो फीलिंग है वो रेडियो से ही आता है, तो मुझे बहुत पसंद है रेडियो.
तो आप देख रहे थे और सुन रहे थे पीपल ऑफ अर्पा विद प्राप्ति, और हमारे साथ ही पर्लिश जायसवाल जो कि एक फैशन इन्फ्लुएंसर है और साथ में लॉयर है. तो मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक बने रहे अर्पा रेडियो के संग.
हाय, मैं हूँ पर्लिश जायसवाल, फैशन इन्फ्लुएंसर एंड लॉयर. सो आप मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं अर्पा रेडियो पर. सो देखते रहिए अर्पा रेडियो, अर्पा रेडियो आपका अपना रेडियो.
ये है आपका अपना अर्पा कम्युनिटी रेडियो बिलासपुर और अर्पा वेब रेडियो. जे हो, जे हो,